हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अचानक बाहर की ओर गोलियाँ चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। अरमान ने अरहम की ओर देखा। चल रही गोलियों की आवाज़ सुनकर रिया कांप उठी और उसने अकरम की बाजू को कसकर पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही रिया ने अकरम की ओर देखा, उसने देखा कि अकरम का मुंह एकदम सपाट था। उसके चेहरे पर किसी भी तरह का कोई भाव नहीं था। रिया अकरम को इतना शांत देखकर बेहद हैरान हुई। गजाला जी को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उनका दिल आज टूट चुका था। जब उनका अपना सगा बेटा खून का प्यासा हो गया हो तो भला वो माँ कैसे सुख में रह सकती थी। गजाला जी को इस बात का तो अंदाज़ा था कि उनके बच्चे उनके इस कदम से उनसे नफ़रत ज़रूर करेंगे, लेकिन वो ये भी जानती थीं कि अगर उनके बेटे और बेटी उनके सामने आएं तो वो उनकी गलती के लिए उन्हें माफ़ भी कर देंगे। लेकिन आज अरमान का अपने प्रति ऐसा भयानक रूप देखकर गजाला जी का दिल हजार टुकड़े हो चुका था। उसके मन में अब सब भाव खत्म हो गए थे। जहां वो पहले सोच रही थी कि अबीर उनके बेटे को अपने लेगा तो उनका बुढ़ापा भी जवानी की तरह एकदम ऐश में गुजरेगा, लेकिन अब अरमान की इतनी नफ़रत देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनके जिस्म की जान निकल रही हो। अब उनके अंदर जीने की सारी इच्छा खत्म हो गई थी और वो बेजान सी निढाल होकर एक ओर बैठ गई थी। बाहर से गोलियां चलने की आवाज़ लगातार आ रही थी। तभी अरमान, अरहम और अकरम व रिया बाहर की ओर चल पड़े और जैसे ही वे चारों बाहर गए, बाहर का नज़ारा देखकर वे सब के सब चौंक गए, क्योंकि बाहर अरमान के सभी आदमियों की लाशें पड़ी हुई थीं और तकरीबन 20-25 आदमी हाथों में बड़ी बड़ी गन लिए उसी ओर आ रहे थे। अरमान हैरानी से उस ओर ही देखे जा रहा था और जल्दी ही उन सब लोगों ने अरमान और अरहम को गन पॉइंट पर ले लिया। अरमान का गुस्सा अब सातवें आसमान पर पहुंच चुका था और तभी अरमान ने अपने सामने खड़े हुए आदमी के मुंह पर लात मार दी और जल्दी ही उसके हाथ से गन छीनकर उसने साइड में खड़े अरहम को दे दी। फिर क्या था, बस देखते ही देखते अरमान ने उन सब आदमियों की धुनाई करना शुरू कर दी और अरमान किसी के ऊपर टांग चला रहा था तो किसी के ऊपर हाथ, और देखते ही देखते उसने उन 20 लोगों को ढेर कर दिया और उन सबको मारकर अरहम की ओर देखने लगा। अरहम भी मुंह खोले अरहम की ओर ही देख रहा था। अरमान ने अरहम को दिखाते हुए अपना कॉलर झटका। अरहम भी काफी ज्यादा हैरान था अपने भाई का ये खतरनाक रूप देखकर। और जब अबीर के एक आदमी ने एक लोहे की रॉड अरमान की पीठ पर मार दी और अरमान गुस्से से उसकी ओर पलटा, और जब अरमान ने अरहम, अकरम और रिया की ओर देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि वे तीनों अपना मुंह खोले उसी ओर देख रहे थे, क्योंकि वो लोहे की रॉड जो अरमान की कमर पर पड़ी थी वो बुरी तरह से मुड़ चुकी थी। तभी अरमान ने उस रॉड मारने वाले की गर्दन में अपनी कोहनी गाड़ दी और अरमान की कोहनी लगने से उस आदमी की आंखें बाहर आ गईं। कुल मिलाकर एकदम हीरो स्टाइल में बड़े से एक्शन के साथ, जैसे किसी मूवी में हीरो गुंडों की धुनाई करता है अलग अलग अंदाज में, ठीक उसी तरह से अरमान ठाकुर ने अपनी स्टील जैसी बॉडी का प्रदर्शन किया और करीब करीब अरमान अबीर के सभी आदमियों को बुरी तरह से धुन चुका था। और जैसे ही वे 20 आदमी जख्मी हुए, तभी अरमान के ठीक पीछे से 40 आदमी गन हाथ में थामे उस ओर चला रहे थे। अरहम आंखें फाड़कर उन आदमियों को देख रहा था। अरमान ने अरहम की नजरों का पीछा करते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान रह गया। अभी तो उसने 20 से 25 आदमियों की धुनाई की थी और अब 40-50 के करीब और लंबे चौड़े आदमी उस ओर ही चल आ रहे थे। तब अरमान ने एक बार फिर अपनी बाजू ऊपर चढ़ाई, मानो वो अभी जाकर उन सबको भी मार गिराएगा। लेकिन जैसे ही अरमान उनकी ओर आगे बढ़ा, तभी अरहम ने वहां जाकर अरहम का हाथ पकड़ लिया और बोला, नहीं भाई। तब अरमान बोला, हाथ छोड़ मेरा, तो देख इनकी तरह मैं इन्हें भी मिट्टी में मिला दूंगा। तब अरहम बोला, आप कितने लोगों को मिट्टी में मिलाएंगे और कब तक भाई? आपको अभी राठौर की ताकत का अंदाज़ा नहीं है। अगर आप इन 50 लोगों को भी मार गिराओगे ना तो और 100 लोग खड़े हो जाएंगे, और अगर आप उन 100 लोगों को भी मार गिराओगे ना तो और 200 लोग खड़े हो जाएंगे। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, ये पूरा शहर अबीर राठौर के इशारे पर चलता है। उसके शहर में आप उससे नहीं जीत पाएंगे। मेरी बात मानिए और जिद छोड़ दीजिए, ताकत से नहीं दिमाग से काम लीजिए। अरहम की बात सुनकर अरमान ने अब और लड़ने का इरादा छोड़ दिया और उन सब लोगों ने अरमान समेत अरहम को भी गन पॉइंट पर ले लिया। तब अरमान अरहम को देखते हुए बोला, आखिर है कौन ये अबीर राठौड़? कब आएगा ये सामने, या ऐसे ही चूहे की तरह पीछे से वार करता रहेगा? अरमान का इतना कहना था कि तभी एक शानदार जेट विमान अबीर राठौड़ के गार्डन एरिया में आकर रुका और उसमें से एकदम सफ़ेद कोट पैंट और लाइट ब्लू गॉगल लगाए हुए एक बड़ा ही स्मार्ट सा, एकदम डैशिंग सा बंदा बाहर निकला। उसके आगे पीछे काले कोट पहने हुए बॉडीगार्ड्स की लाइन लगी हुई थी। अबीर ने बाहर खड़े हुए अरमान और अरहम पर एक भी नज़र नहीं डाली, बस अक्रम और रिया की तरफ को एक हल्की सी स्माइल देता हुआ वो सीधा अपने महल जैसे घर में चला गया। अक्रम और रिया, जो कि अब एकदम आज़ाद थे, वे दोनों अबीर के इशारे पर अंदर चले गए। अरमान और अरहम मुजरिमों की तरह वहीं खड़े होकर एक दूसरे का मुँह देख रहे थे। अरमान एकदम लाल सुर्ख आँखों से अरहम को घूर रहा था। तब अरहम ने अरमान से कहा, भाई अगर आपको ज़ोया चाहिए तो आपको ये अपमान का घूंट तो पीना ही पड़ेगा। ज़ोया का नाम सुनकर अरमान थोड़ा सा ठंडा पड़ गया। तभी अबीर का असिस्टेंट रोहित वहां आया और अरमान अरहम को देखकर एक गार्ड से बोला, इन दोनों को बॉस अंदर बुलाया है, तुम इन दोनों को लेकर अंदर आओ। ये सुनते ही एक गार्ड ने अरमान की कमर में गन घोंसते हुए कहा, अंदर चलो, बॉस बुला रहे हैं। ऐसा कहकर वो अरमान और अरहम को अंदर की ओर ले जाने लगा। वहीं अबीर सीधा अपनी हेड चेयर पर राजाओं की तरह बैठा हुआ था। उसने अपनी सौतेली माँ को भी पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, जो वहीं पास की टेबल के पास सिर झुकाए बैठी हुई थी। अक्रम और रिया अंदर गए, तभी अबीर उठा और उसने अक्रम को गले से लगा लिया और उसके कान में बोला, थैंक यू। तब अक्रम ने अबीर के कान में पूछा, वो कैसी है? तब अबीर बोला, डोंट वरी, वो बिल्कुल ठीक है। तब अबीर ने रिया की तरफ को हल्की सी स्माइल दी और फिर राजाओं की तरह अपनी हेड चेयर पर बैठ गया और जल्दी ही रोहित अरमान ठाकुर और अरहम ठाकुर को गन पॉइंट पर लेकर वहां आ गया। अरमान की आंखें अबीर राठौर को देखकर एकदम सुर्ख हो रही थीं। आखिर अरमान ठाकुर भी कोई आम आदमी नहीं था, अबीर जितनी नहीं लेकिन उसकी ताकत कुछ कम भी नहीं थी। तभी अबीर उन दोनों पर एक सरसरी सी नज़र डालते हुए बोला, कौन हो तुम लोग और तुम्हारी जरूरत कैसे हुई अबीर राठौर के घर में घुसने की? ऐसा कहकर अबीर ने रोहित की ओर इशारा किया और देखते ही देखते रोहित ने अरमान और अरहम ठाकुर को अपने बंदूक के निशाने पर ले लिया। तब अबीर राठौर दहाड़ा, मैं तुम लोगों को केवल एक आखिरी मौका देता हूँ, बताओ कौन हो तुम लोग और मेरे घर में कैसे घुस आए हो और मेरे आदमियों पर हाथ उठाने की, उन्हें अपने कब्जे में लेने की हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की? अबीर एक एक वर्ड बड़ा ही चबा चबा कर बोल रहा था। हालांकि उसने अरहम को अपनी सौतेली माँ के घर पर देखा था, लेकिन इस वक्त उसने अरहम को भी जानने से एकदम से मना कर दिया। अबीर का सवाल सुनने के बाद अरमान और अरहम दोनों भाई उसे कड़ी कड़ी नजरों से देखने लगे।
तब अबीर ने उनसे कोई जवाब न पाकर कहा, ठीक है, अगर तुम लोग ये नहीं बता रहे हो कि तुम लोग कौन हो कौन नहीं, तो अबीर राठौड़ किसी को दूसरा मौका नहीं देता। तुम लोगों ने अपना मौका गवा दिया है, इसलिए मैं अब तुम लोगों को सजाए मौत देता हूँ। ऐसा कहकर अबीर ने अपने आदमियों को इशारा किया और बोला, छह की छह गोलियां इन दोनों के भेजे में उतार दो। अबीर ने जैसे ही ऑर्डर दिया, अरहम और अरमान के कान एकदम से खड़े हो गए और अरहम की तो टांगे कांपने लगी। और जैसे ही अबीर के आदमियों ने अपनी गन पॉइंट पर उन दोनों भाइयों को लिया, तभी मानो गजाला जी के जिस्म में एकदम से जान आ गई हो और वो एकदम से उठीं और, नहीं नहीं अबीर, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ऐसा कहती हुई अबीर राठौड़ के पैरों में गिर पड़ी। अबीर गजाला जी के इस रिएक्शन से एकदम सकपका गया। हालांकि उसने कभी गजाला को अपनी माँ नहीं माना था, लेकिन उनका इस तरह से उसके पैरों में गिरना अबीर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो एकदम से उठ खड़ा हुआ और उसने अपने दोनों हाथों से गजाला जी को कंधों से पकड़कर उठा दिया और बोला, ये आप क्या कर रही हैं? इन घुसपैठियों के लिए आप मेरे पैरों में गिर पड़ी, ऐसा क्यों कर रही हैं आप? क्या आप इन लोगों को जानती हैं? अबीर ने जानबूझकर गजाला जी के मुंह से सुनने के लिए ये बोला था। तब गजाला जी ने नम आंखों से अरमान की ओर देखा और फिर अरहम की ओर देखा। उसके बाद बोली, अबीर बेटा, शायद तुम भूल गए हो, ये मेरा बेटा है अरहम, मैंने तुम्हें इससे मिलवाया था। गजाला जी ने थोड़ा अटकते हुए ये सब कहा। ये सब कहते हुए वो शर्मिंदगी की वजह से अपने आप को जमीन में धंसता हुआ सा महसूस कर रही थीं। लेकिन तभी अरमान आगे आया और अबीर राठौड़ से बोला, मेरा इस औरत से कोई लेना देना नहीं है, और तू जानना चाहता है ना कि मैं कौन हूँ, तो सुन, मेरा नाम है अरमान, अरमान ठाकुर, और तेरे इस शहर में मैं अपनी सबसे प्यारी चीज लेने आया हूँ जो तेरे पास है। तो तेरी भलाई इसी में है कि तू मुझे उसे वापस कर दे, वरना मुझसे बुला कोई नहीं होगा। तू जानता नहीं है कि अरमान ठाकुर क्या चीज है। ऐसा कहकर अरमान अबीर की तरफ को दहाड़ा। अबीर का मन तो किया कि वो अरमान का भेजा उड़ा डाले, क्योंकि उसने अबीर राठौड़ की बीवी को चीज कहा था।